ओम शांति। बहुत प्रेम और सम्मान से आप सबका बहुत बहुत आत्मिक स्वागत। वैद्यराशि बाबा के हम सब बच्चे, बाप हमारा वैद्यनाथ, तो बच्चे फिर बीमार हो सकते हैं? नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी देखने में आता है यदा कदा शरीर अपना प्रभाव दिखाता, रोग शरीर में अपना प्रभाव दिखाते। कारण अनेक है, कुछ का निवारण संभव है, कुछ का थोड़ा कठिन है, लेकिन बाबा की दुआ और कुछ दवाओं के सहयोग से हम सब इस शरीर रूपी मशीनरी को ठीक प्रकार से चला सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। शरीर रोगी होने के अनेक कारण हैं, ये तो हमने जाना। मुख्य तौर पे तो हमारे संकल्प, क्योंकि आजकल विज्ञान भी मानता है, चिकित्सा शास्त्र भी मानता है कि अधिकांश शारीरिक रोग मन से चलते हैं, मन के संकल्प से, निगेटिव संकल्प। कहा भी जाता है संकल्प से परमात्मा ने सृष्टि रची, तो हम सब कौन है? मास्टर रचता। तो परमात्मा ने बेहद की सृष्टि रची और हमने क्या किया? संकल्प से हद की सृष्टि रची। ये शरीर भी और संसारिक जो देखते हैं रचनात्मक मनुष्य का निर्मित, तो शरीर भी हमारी रचना है। जैसे संकल्प जैसे संस्कार वैसा ही शरीर मिलता है अगले जन्म में, और संस्कार बनते हैं कर्मों से। तो जैसे कर्म किए वैसे संस्कार मिले, जैसे संस्कार मिले वैसा ही अगले जन्म में शरीर मिलता। निगेटिव कर्म है, निगेटिव संस्कार है, तो निगेटिव ही हमारे शरीर की रचना होती और अनेक प्रकार के रोग आते। संकल्प से बहुत कुछ हम स्वस्थ कर सकते हैं। अगर संकल्प से निगेटिव सृष्टि रची गई तो शुद्ध संकल्प से अच्छी सृष्टि रच सकती है। कोई काम गलत हो जाता, और हमने जाना कि गलत हो रहा है, तो हम ठीक भी कर लेते हैं ना उसको। इसलिए अगर कुछ शरीर अस्वस्थ है तो जरूरी नहीं है कि हम जिंदगी भर अस्वस्थ रहेंगे। अगर हम अपने संकल्पों को शुद्ध कर लेंगे और कारण का निवारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से शरीर इतना स्वस्थ हो ही सकता है कि हमारी सेवा और साधना में विघ्न न डाले बल्कि सहायक बने। अगर देखा जाए अब भी कलयुग के अंत में, उसके भी अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म के भी इस अनेक वर्ष पुराने शरीर में अब भी अधिकांश समय ये हमारा साथ देता है। कभी कभी गड़बड़ होती है, तो वो गड़बड़ भी हम काफी हद तक 80-90% तक कम कर सकते हैं। तो अनेक रोगों के बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन मूल रूप से हम ये समझें संकल्प से जब सृष्टि रची गई, रची भगवान ने, और हम मास्टर रचता बच्चे, तो अगर संकल्पों को हम दुरुस्त कर लेंगे, कारण को निवारण कर लेंगे, तो हम शरीर को भी काफी हद तक स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज जो चर्चा करेंगे वो है कॉमन, बहुत कॉमन बीमारी है एसिडिटी, गैस, अपचन, हाइपर एसिडिटी, गैस और इंडाइजेशन। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है ना, और काफी दवाएं लोग खाते रहते हैं अक्सर, डाइजीन, एंटासिड्स वगैरह, एसिडिटी की दवाइयां हैं। एसिडिटी लंबे समय तक हो जाती है तो पेट में अल्सर बन जाते हैं। अल्सर क्या है? जैसे मुंह में छाले बन जाते हैं, ऐसे ही पेट के अंदर जो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो झिल्ली जगह जगह टूट जाती है, तो वो जख्म बन जाता है, जैसे मुंह में छाला बन जाता है, इसी को अल्सर कहते हैं। क्योंकि एसिड है ना पेट में, तो एसिड क्या करता है? हर चीज को काटता है। तो कुछ कारणों से जो झिल्ली हमारी अंदर की स्वस्थ झिल्ली है वो भी कट जाती है, तो अल्सर बन जाता है। फिर अल्सर से ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो फिर ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, खतरनाक बन जाता है। लेकिन इन सब चीजों से हम बच सकते हैं, गैस, एसिडिटी, अपचन से हम बच सकते हैं। तो आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि कारण क्या है क्योंकि कारण जान लिया तो फिर निवारण भी कर सकेंगे। तो थोड़ा सा हम जाने शरीर का सिस्टम क्या है हमारा, कि जब भी हम कुछ भोजन खाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मुंह में डाल के चबाते हैं उसको। चबाने के बाद में वो भोजन आहार नली से आमाशय के अंदर पहुंचता, जो थैली है पेट के अंदर वहां पे जाके इकट्ठा होता है, वहां पे उस भोजन को मथा जाता है। जैसे आटा मथते ना, ऐसी कोई चीज मथे मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग होती है। तो ग्राइंडिंग कहाँ होती है, जैसे अन्न होता है ना चक्की में, पहले पीसते हैं फिर क्या करते हैं उसको मथते हैं, मिक्सिंग करते हैं, फिर मिक्सिंग करने के बाद में जो पाचक रस मिलते हैं तो उससे वो भोजन तत्व जो है, जो मोटा मोटा है विभिन्न प्रकार का, वो उसमें से पाचक तत्व अलग हो जाते हैं। और वो पाचक तत्व फिर आते खींच लेती और खींचकर खून में मिलाती, खून से फिर वो जिगर में जाता और जिगर से वो सारे शरीर के अंदर पोषक तत्व जाते, तो शरीर की हर कोशिका को पोषक तत्व पहुंचते और उन पोषक तत्वों से शरीर की कोशिकाएं एनर्जी ऊर्जा पैदा करते और उस ऊर्जा से हम शरीर के सारे कार्य करते, सोचने से लेकर जीवन के सब कार्य उस ऊर्जा से चलते हैं। तो ये है हमारी मशीनरी सिस्टम। तो वास्तव में नेचर ने तो इस अंतिम जन्म में भी, कलयुग के अंतिम जन्म में भी हमारे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से बनाया, लेकिन हम हैं कि इसको खराब करने पर लगे रहते हैं, है ना। अब जैसे कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आपको दे, फादर दे दे, लेकिन ड्राइवर अगर सही नहीं है, लापरवाह है, तो या तो टक्कर मार मार के तोड़ देगा, या ठीक से मेंटेनेंस नहीं करेगा, धोएगा साफ नहीं करेगा, तेल पानी सही टाइम से नहीं डालेगा, सही मात्रा में नहीं डालेगा, तो कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो वो भी बेकार हो जाएगी बहुत जल्दी, खटारा गाड़ी बन जाएगी, है ना, समय पे धोखा दे जाएगी। तो वो सब गड़बड़ हमारी वजह से होती है। कुछ 10% समस्याएं ऐसी भी होती है कि हमारे हाथ में नहीं, कुछ प्राकृतिक चीजें ऐसी होती है कि गाड़ी तो आप सही ढंग से चलाएं लेकिन सामने वाला टक्कर मार दे तो क्या करे। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं प्रकृति के अंदर कि हम उसको नहीं कर सकते, कि जैसे भोजन तत्वों पे आजकल कीटनाशक बहुत छिड़कते है ना, विदेशी खादें लगाते, हर चीज तो आप घर में पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। पिछली बार बताया ठीक से धोएं खाएं तो उसमें हम सुधार तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ तो 10% तो हो सकता है जो, लेकिन बाकी 90% तो हमारे हाथ में है। तो गैस एसिडिटी इसका कारण क्या है, इसके कारण पहला कारण तो हमारे आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर क्या, कि मन में जब भी निगेटिव संकल्प चलते, तो पहली बार बताया था हाइपोथैलेमस से निगेटिव केमिकल निकलते, वो निगेटिव केमिकल शरीर के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ते और शरीर के हर अंग हर कोशिका को खराब करते। आपने सुना होगा देखा होगा, जब कभी एग्जाम दिए होंगे बचपन में, जब ज्यादा कोई टेंशन होता है तो क्या होता है ना, एसिड ज्यादा बनने लगता है, बहुत से लोगों को डायरिया हो जाता है, बार बार बाथरूम जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो बार बार बाथरूम की तरफ भागेंगे, है ना। ये भी देखा हुआ कि बच्चों को डांट दो अचानक तो कपड़े खराब हो जाते हैं बच्चे के, तो किसी ने घुसा थोड़ी मार दिया पेट में उसके, संकल्पों से ही कपड़े खराब हो जाते हैं। किसी को उल्टी लग जाती टेंशन में, सुना होगा देखा होगा, है ना, कभी कोई टेंशन की बात होती है तो फिर एसिडिटी ज्यादा हो जाती। तो हमारे मन से जो संकल्प चलते उसके कारण शरीर में जो एक नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, हमारे पेट के अंदर दो तरह के पाचक रस होते हैं, तो एसिड होता है और एक होते हैं पाचक रस एंजाइम्स। तो जो टेंशन होता है तो टेंशन से हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर एसिड ज्यादा बनता है, पाचक रस कम बनते हैं, एसिड ज्यादा बनता है, तो उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी टेंशन की वजह से होती है, है ना। और अगर हम शांत भाव से हैं, टेंशन में नहीं है, पॉजिटिव केमिकल निकलते हैं तो पाचक रस एंजाइम्स ज्यादा बनते, जैसे यूनियन एंजाइम खाते हैं बहुत से लोग, बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन को पचाते। तो जो भोजन पचता नहीं है, पाचन में गड़बड़ है हमारे, तो क्या होता है, वो भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, छोटी आंत में भोजन पचता है और पाचक तत्व उसके शरीर खींच लेता है, लेकिन जो पानी है वो बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत से पानी जो है शरीर में जाता है ना। तो इसलिए जब आंतों की गति बहुत बढ़ जाती तो पाचक रस पाचक तक भोजन जो है पचता नहीं ठीक से, तो वो बड़ी आंत में चला जाता है, वहां कीटाणु होते हैं। तो कीटाणु क्या करते, कीटाणु भोजन से गैस बना देते। जैसे आपने देखो ना, आटा अगर पुराना हो जाए, पचा बल्ब आटा बना के रख दें और गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो बुलबुले बनने लगते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है, दही में फर्मेंटेशन हो जाएगा और खाने में फर्मेंटेशन हो जाता है। तो कीटाणु जो होते हैं उस भोजन को तोड़ के उसमें गैस बना देते हैं और भोजन तत्व खुद खा जाते हैं उसमें से, और गैस एसिडिटी बनती, तो वो गैस बन जाती है। तो वो गैस फिर पेट में आंतों में इकट्ठी होती रहती है। वैसे तो आंतें पेट जो हमारे खोखली होती है अंदर से, तो उसमें हवा तो हमेशा रहती ही है, लेकिन जब भोजन अपचय हो जाता, इनडाइजेशन हो जाता, तो वो भोजन जो है उससे गैस बन जाती और वो गैस फिर पेट में इकट्ठी होती, तो या तो पेट में अफारा आता या फिर डिस्चार्ज होती, तो उससे गैस के रोग उसको कहा जाता है कि जब गैस बने ज्यादा और बन के फिर डिस्चार्ज नहीं हो, तो उससे पेट में डाइजेशन भी गड़बड़ हो जाता, डिस्टर्ब भी होता, माइंड भी डिस्टर्ब होता। तो पहला कारण तो हमारे मन के अंदर है। इसलिए भोजन जब खाएं तो बाबा ने क्या श्रीमत दी मुरली में, बाबा की याद में भोजन करें। तो याद में भोजन करने से क्या फायदा होता है उसका वैज्ञानिक आधार बताएंगे। हम तो सिंपल रूप में लेते, अरे बाबा ने कहा है तो ऐसे ही कह दिया है, चलो ठीक है याद में खाओ, याद की कमाई हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है कि याद में भोजन क्यों खाएं, क्या फायदा है, तो उसके पीछे वैज्ञानिक आधार है। अब बाबा की जो मुरली सुनने वाले बच्चे सभी तो वैज्ञानिक नहीं है, सभी तो डॉक्टर नहीं है और सब बातें समझेंगे भी नहीं, इसलिए बाबा ने एक सेंटेंस में कह दिया, बच्चे बाप की याद में भोजन खाओ। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही, ये भोजन बहुत पावन भोजन है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और क्या कहा भोजन के बारे में बाबा ने, कि भोजन बाबा की याद में खाओगे तो ये भोजन शरीर को स्वस्थ बनाएगा। लेकिन बहुत सारी फूड एलर्जीज होती, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, कुछ प्रयोग भी आप करना फिर अपने अनुभव बताना। तो पहला कारण तो एसिड बनने का, एसिडिटी का और अपचन का दिमाग में होता। तो जब हम टेंशन में खाना खाते या जल्दबाजी में खाना खाते या जल्दी जल्दी में खाना खाते, तो आपने देखा होगा जब टेंशन में खाना खाते हैं, जल्दबाजी होती है, तो जल्दी जल्दी भोजन खाएंगे तो क्या होता, भोजन ठीक से पचाते नहीं, मुंह में डाला अंदर, मुंह में डाला नीचे, है होता है ना। टेंशन में खाना, जैसे दिमाग तेज चलता वैसे दांत भी तेज चलते, तो मुंह जल्दी जल्दी चलता तो बड़े बड़े टुकड़े तोड़ते, कभी शांति से खाना खाएंगे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे आप, और कभी टेंशन में हो तो बड़े बड़े एक रोटी के चार पीस करने के चक्कर में अंदर फट से डाला कि जल्दी भागना है, ड्यूटी पूरी करनी है खाने की, है ना। या टेंशन है, ध्यान कहीं और सोच रहे हैं, तो आप कभी दूसरे व्यक्ति को देखें, आप खुद को अपने को वॉच करें साक्षी होके, बीच में देखेंगे कि जल्दी जल्दी टुकड़े मोटे मोटे टुकड़े जा रहे हैं और जल्दी जल्दी मुंह में गए नीचे उतरे। तो भोजन चक्की कहां लगाई है नेचर ने, मुंह के अंदर चक्की लगाई है। तो जो खाना अगर ठीक से चबाएंगे नहीं तो क्या होगा, मोटे मोटे टुकड़े अंदर जाएंगे। तो पाचक रस क्या करते हैं, जो बारीक कण होते हैं ना, खाना जो चबा के अंदर पहुंचाएंगे तो अंदर मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होने के बाद में जो पाचक तत्व है, जो एक एक कण है उस पर चिपक जाते हैं और उसको पचा के गला के और फिर खून में मिला देते हैं। तो जब बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं तो अंदर तो अंदर चक्की नहीं है, चक्की तो यहां है। अब आपने बिना चक्की मोटा मोटा गेहूं बिना पिसा कर खाएंगे तो क्या होगा, अगर आप बारीक आटा ना खा के और गेहूं की रोटी बना के खा जाएं तो पचेगी क्या, नहीं। तो हम वो मोटे मोटे टुकड़े अंदर जाते हैं, तो पेट का काम, पेट कहता भी मेरा काम तो मिक्स करने का है, है? जैसे रोटी बनाने वाली माताएं क्या कहेंगी, भाई मानने का काम तो मशीन का है, हमें तुम जैसा आटा दे दोगे वैसा बना देंगे, ये काम मेरा नहीं है। तो पेट कहता भी तुमको चक्की तो ऊपर लगा रखी है, ऊपर लगा नेचर ने, मेरा काम इसको पीसना नहीं है, मेरा काम तो मिक्सिंग है, मैं तो पाचक रस मिक्स कर दूंगा बाकी काम तुम जानो। तो जो काम हमारे बस के नहीं होता हम क्या कहते हैं, बाईपास, आगे के लिए बढ़ा दो। तो दांतों से छूट गया तो पेट कहेगा बाईपास, इसको आगे बढ़ाओ। तो छोटी आंत में आया, तो छोटी आंत में पैंक्रियाज और जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है उससे पित्त और कुछ पाचक रस मिलते हैं आके, तो हमारे भोजन में जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तीन चीज होती है ना, तो तीनों को पचाने के लिए तीन तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, तो वो उसकी मिक्सिंग करते हैं। लेकिन मिक्सिंग किस पे करें, मोटे मोटे टुकड़े गए, पेट के बस की तो बेचारे के पीसना रहा नहीं, वो कहता भाई आगे जाओ। तो छोटी आंत क्या कहती है, वो चिपका देती है ऊपर। एक होता है मिक्स करना ठीक से हर कोशिका उसका जो कण के ऊपर एंजाइम्स चिपकाना, एक है ब्रश से रोटी पे घी लगा देना से। तो एंजाइम्स लेप दिए तो क्या होता, एंजाइम्स पहुंचते नहीं हर तत्व तक, तो जिसकी वजह से वो अन्न पचता नहीं है। और छोटी आंत भी कहती है भाई आगे जाओ मेरे बस की नहीं, तो बड़ी आंत में चला जाता है फिर। और बड़ी आंत में क्या होता है, कीटाणु बैठे होते हैं। तो कीटाणु कहते हैं भाई हमारे मालिक बहुत बढ़िया है, तो कितना बढ़िया ब्रह्म भोजन भेजा है आज खाने के लिए, पौष्टिक भोजन। तो वो क्या करते हैं, खा जाते हैं उसको, दावत उड़ा देते हैं। और जब दावत उड़ती है तो आदमी खुश हो जाता है ना, फिर तो मस्ती करता है, तो पेट में कीड़े भी मस्ती करते हैं। तो क्या बनाते हैं खुश होके, एसिड और गैस। तो एसिड गैस बनती है तो फिर क्या होता है, पेट में अफारा आएगा, फिर चूरन चटनी खाएंगे, फिर इधर उधर दौड़ लगाएंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, फिर दवाइयां खाएंगे, है ना। तो गड़बड़ क्या करे, शरीर तो अपना काम फिट कर रहा है, लेकिन हम उसको इतना गड़बड़ कर देते हैं मशीनरी को, कि मशीनरी भी अपना काम ठीक से नहीं करती, ठीक है ना। तो पहला गड़बड़ दिमाग में, हम टेंशन में खा रहे हैं, जिससे एक तो एसिड ज्यादा बन रहा, दूसरा खाना हम जल्दी जल्दी खाते, चबता नहीं तो पचता नहीं, और पचता नहीं तो मिक्स नहीं होता तो एंजाइम्स काम नहीं करते, एंजाइम्स काम नहीं करते तो वो फिर गैस एसिडिटी बना के। तो एक तो कारण इसका ये होता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या होता है कि जब हम शांति से भोजन खाते तो हमारे अंदर पाचक रस बनते, आंतों की गति जब टेंशन होता है फास्ट होती है, तो जब फास्ट गति से हम भोजन खाते हैं तो आंतों की गति फास्ट होने से क्या होता है कि वो भोजन अगर माना आधा घंटा लगेगा उसको रस बनाने में तो वो जल्दी पास ऑन हो जाता है, तो ठीक से आंतों को टाइम नहीं मिलता उसको पचाने का और उसका रस खींचने का। तो जैसे आप मिक्सी में तेजी से चला दें, सही स्पीड पर ना चलाएं, तो जितना भी फलों का जूस निकलेगा नहीं, अधकचरा माल निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे आंतों के अंदर भी खाना ठीक से पचता नहीं, तो अगर शांति से खाएंगे आंतों की गति मंदी हो जाती, पाचक रस ज्यादा बनते, खाना ठीक से चबाया जाता धीरे धीरे, और फिर पूरा पचता, पूरा पिस जाता, पिस के पच के पूरा रस मिल जाता। तो आप वैसे अगर टेंशन में 6 रोटी खाएंगे या 5 रोटी खाएंगे, अगर ईश्वर की याद में शांति से चबा चबा के 2 रोटी खाएंगे तो 2 रोटी बराबर 5 रोटी के ताकत उतनी आएगी, क्योंकि बाकी तो वेस्ट जा रहा है, शरीर में पहुंच ही नहीं रहा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप बाबा की याद में भोजन करेंगे तो संकल्प शांत हो जाएंगे, तो हर चीज अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। एक तो ये चीज है। दूसरा, भोजन क्या खाते हैं, तो भोजन 3 तरह का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी भोजन वो है जिसको खाने से मन में सुख शांति पैदा करता है, शरीर में भी मन में भी, जैसे देवता भोजन खाते हैं। गरिष्ठ भोजन रजोगुणी, तेल थोड़ा सा उसमें चिकनाई मिठाई ज्यादा होती। और जो तमोगुणी है, बासी भोजन, मिर्च मसाले, है ना, बहुत ज्यादा अगर तेल बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तेल तो जरूरी है शरीर को, बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा मिर्चें, है ना, बहुत ज्यादा अचार, तो जो बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन है ये तमोगुणी भोजन करता। सतोगुणी भोजन क्या करता, मन को और तन को फुर्तीला बनाता। रजोगुणी भारी करता थोड़ा उसको और देर से पचता। और तमोगुणी सुस्त बनाता। तो अगर आलस ज्यादा है, सुस्ती ज्यादा है, मिर्च मसाले ज्यादा है, तो उससे शरीर भारी और आलसी हो जाता, तो तमोगुण बढ़ जाता, यानी कि आलसी बन जाता, मोटा थुलथुल हो जाता। तो ये कारण है। तो जैसा भोजन वैसा प्रभाव शरीर पे पड़ता है, क्योंकि शरीर किससे बना, 5 तत्वों से बना, पृथ्वी तत्व। तो जब पृथ्वी तत्व ही गड़बड़ है, मकान बनाते समय आपने सीमेंट ईंट उसको रेता घटिया क्वालिटी का डाला है, तो फिर क्या होगा, मकान भी ऐसे ही बनेगा, है ना। तो बढ़िया क्वालिटी का मेटेरियल माना सतोगुणी। तो हम तो क्योंकि देवता घराने की आत्मा है, ब्राह्मण है, तो आध्यात्मिक लक्ष्य है जीवन का, तो इसलिए भोजन भी सतोगुणी होना चाहिए। रजोगुणी कभी कभी टेस्ट के तौर पे खा लें, और तमोगुणी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर तमोगुणी खाना या रजोगुणी खाना खाएंगे तो ऐसा खाना मुश्किल से पचता, एसिडिटी और गैस ज्यादा बनाता है। तो इसलिए भोजन में मिर्च और तेल, खटाई खानी है कोई बात नहीं खाएं, लेकिन मात्रा बहुत हल्की होनी चाहिए। जितना ज्यादा मात्रा में लेंगे तो वो हमारे सिस्टम को नाश कर देगा, और हल्की मात्रा में लेंगे तो उत्तेजित करेगा उसको, है ना। तो बहुत हल्की मात्रा में खाएं। लेकिन जो लोग बहुत से ऐसे भी खाना संगठन है, सबके लिए बनता है, अब एक व्यक्ति क्या खाना नहीं बने कह देंगे ये क्या घास कूड़ा बनाया है, तो उन्हें मजा ही नहीं आता खाने में। तो उनकी वजह से क्या है कि बाकी सबके 80% लोगों के पेट थोड़ी खराब करेंगे। तो उसके लिए एक विधि युक्ति ये भी हो सकती है कि भाई जिनको कहते हैं नहीं भाई चाहे हम मर जाएं, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई ईट टू लिव और लिव टू ईट, कहते कुछ भी हम तो भाई खाएंगे, मिर्च मसाले तली हुई चीजें खूब ढेर सारी चाहिए। तो बेहतर ये है कि एक भिगोने एक मशीन वो लगा दें हीटर या कोई बर्नर, और उसके ऊपर तेल और मिर्च खटाई मसाला बना के पकता रहे, जिसको जितने चम्मच डालने डालने। लेकिन बाकी सबके 80% लोगों को तो पेट ठीक रहेंगे, तो जिसको इसके बिना काम नहीं चलता है तो फिर वो मजे की सजा तो है ही, फिर जितना मजा लेंगे उसका उतनी सजा भी खाएंगे। तो उनको खाने दें, बाकी 80-90% लोग क्यों परेशान हो। तो बेहतर यह है कि जो छौंका है मिर्च मसाले तड़का है वो अलग से एक अंगीठी पे जलता रहे, जिसको जितना चम्मच चमचा डालना है डाले, बाकी सब तो बच जाएंगे परेशानी से। तो इसलिए कोशिश करें। एक बार बड़ी अच्छी बात थी, किसी ने कहा बिना मिर्च के तो हमारा खाने में स्वाद ही नहीं आता, क्या करें। तो आजकल खानों में न खुशबू रही है न टेस्ट रहा है, प्रकृति तमो प्रधान है, कमजोर है, तो क्या करें ऐसे। मिर्च भी खानी जरूर है और पेट भी नहीं जलाना है। तो हमने कहा भाई जब मुंह जलेगा तो पेट भी जलेगा, है ना, तो फिर क्या करें। तो युक्ति ये आई निकल के, आशा दीदी थी वो आरती वाली, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बोले फिर ऐसे करो बड़ी मिर्च लो हरी वाली, उसको खूब चबाओ और चबाने के बाद थूक दो उसे खाने से पहले। तो जब तक खाना खाओगे मुंह टेस्ट यहीं तक तो है ना, गले तक, तो तब तक टेस्ट आता रहेगा मिर्च का बराबर, और पेट भी नहीं जलेगा, हाथ भी नहीं जलेगी, और मुंह का काम भी, मन का काम भी हो जाएगा और पेट का काम भी हो जाएगा। तो भैया भी बड़ी अच्छी युक्ति है, हरी मिर्च ले चटपटी, खूब चबाए उसको, चबा के थूक दे, फिर खाना खाते रहे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा खाने में मिर्च नहीं है, है ना, स्वाद आता रहेगा। तो अगर खाना ही है तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो उससे नुकसान से कम मुंह जलेगा, पेट नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो मन को शांत रखें बाबा की याद में भोजन खाने से, आते की गति मंदी हो जाती, पाचक रस ज्यादा निकलते, एसिड कम बनता, खाना आराम से चबाया जाता, याद की कमाई भी होती और शरीर की शक्ति भी बढ़ती भोजन से। तो पहली चीज ये। दूसरी बात, भोजन को ठीक से चबाएं, और चबाते समय होंठ बंद रहने चाहिए, क्योंकि कई बार अगर भोजन करते समय जल्दी खाते हैं ना मुंह खुल जाता है। जिनको जुखाम है नाक बंद हो गई कभी कभी, वो तो अलग बात है, नाक बंद है तो मुंह खुला ही रहेगा चबाते समय भी। लेकिन अगर नाक खुली हुई है ठीक है, तो कई बार हैबिट पड़ जाती है, तो अपने किसी साथी को बोले वो बार बार आपको इशारा करेगा तो आपको फिर आदत पड़ जाएगी। तो अगर खाना चबाते समय होंठ खुले रहेंगे तो खाना सटकते समय गैस भी अंदर जाती है, इसलिए कुछ लोग क्या शिकायत है कि डकार बहुत आती है खाना खाने के बाद, वो इसलिए आती कि अंदर गैस भी खाने के साथ साथ जाती और जाने के बाद फिर बाद में गैस निकलती रहती है। तो होंठ बंद रहते चाहिए चबाते समय, तो मुंह से आवाज भी नहीं आएगी और भोजन के साथ में गैस भी नहीं जाएगी। तीसरा, भोजन उतना खाएं जितनी पेट में जगह हो। एक होती है इच्छा, इच्छा से भोजन खाते हैं, एक है आवश्यकता के अनुसार भोजन खाते हैं। तो हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लेकर बैठे। कई बार ज्यादा भोजन खाने से, अब माना कोई मजदूर है और वो 5 किलो वजन उठा सकता है, रोजाना 5 किलो की आदत पड़ी हुई है, और उस पर तुम एक दिन धर दो 15 किलो वजन 10 किलो वजन, तो क्या होगा, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर की आंतों को पता होता है कि रोजाना हम कितना खाना है। अगर किसी दिन बहुत टेस्टी भोजन बना तो हम क्या करते हैं, 2 की जगह 4 पराठे, 2 की जगह 4 रसगुल्ले, तो और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा कर लेते ना। तो एक्स्ट्रा चीज क्या होती है, आप पर भी अगर जो सेवा रोजाना करते हो, अपनी ताकत से पूरी सेवा कर रहे हो, और अचानक आपको एक्स्ट्रा सेवा मिल जाए तो क्या होता है, फिर थक जाते हो या दूसरे पर डालते हो, है ना, या फिर क्वालिटी गिर जाएगी। काम सेवा तो पूरी करेंगे, घटिया क्वालिटी की सेवा हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर पेट पर तुमने अचानक लोड एक्स्ट्रा डाल दिया तो क्या करेगा, भाई आज तो बस की नहीं है, अभी बहुत काम आ गया तो बहुत सेवा होगी, आधा पचा आधा पचाएगा, आधा भार भेज देगा, है नहीं, तो उससे फिर क्या बनेगा, अपच भोजन फिर गैस एसिडिटी पैदा कर देगा। तीसरा क्या, भोजन भरपेट ना खाएं। हमने उस दिन बताया था कि पृथ्वी तत्व कितना, 1/3, और जल तत्व कितना, 2/3। तो जो सॉलिड भोजन है वो 1/3 हिस्सा होना चाहिए, और जो तरल पदार्थ वाला भोजन है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि है तो छोटी छोटी बातें, नहीं मानेंगे तो फिर दवाइयां हैं, डॉक्टर किस लिए बैठे हैं, कह के करोड़ रुपए खर्च करते हैं पढ़ाई पे, तो किस लिए खर्च करते हैं, बेचारे बैठे भूखे मर जाएंगे। तो अगर आप लोग सारी बात मानेंगे तो उनका भला कैसे होगा, है नहीं, तो कुछ डॉक्टरों के भी दोस्त होने चाहिए। तो वो खैर हमें नहीं बनना है डॉक्टरों का दोस्त, वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे नहीं मानेंगे तो है बड़ी सिंपल बात, लेकिन जीवन भर काम आने वाली है, और कोई बताएगा भी नहीं, कोई पढ़ाएगा भी नहीं, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, बाबा वैद्यनाथ है, तो अपने बच्चों को ये शिक्षा भी देगा स्वास्थ्य की, ताकि कारण का निवारण कर सके, दवाइयों पर निर्भर ना रहना पड़े। तो भोजन सॉलिड भोजन 1/3 हिस्सा, 2/3 तरल पदार्थ, सब्जी, पतली सब्जी, सब्जी जरूर खाएं, पतली खाएं, दालें खाएं, पतली खाएं, बना के छाछ का इस्तेमाल करें, तो पानी तरल पदार्थ, सिंपल पानी ना लें, तरल पदार्थ सब्जियों में, दाल के रूप में, छाछ के रूप में भोजन के साथ लें, तो 2/3 पानी, और फिर जगह छोड़ देना चाहिए पेट में, 1/4 हिस्सा या 1/3 हिस्सा छोड़ देना चाहिए पेट के अंदर खाली। क्यों, कोई थैला है आपके अंदर, आपने सामान भर दिया और थोड़ा पिचकाएंगे तो सारा सामान बाहर आ जाएगा ना। एक गुब्बारा ले लें, कैरी बैग ले लें, गुब्बारे में डालें, पहले पानी डालें, पहले थोड़ा अन्न डाल दें उसमें, फिर पानी डाल दें और ऊपर तक भर दें उसको, तो जब वो बेचारा मिक्स करेगा तो क्या होगा, सारा बाहर को आ जाएगा। फिर लोग क्या शिकायत है कि खाना खाने के बाद में खट्टा पानी और भोजन मुंह में आ जाता है, चढ़ जाता है, शिकायत होती है बहुत लोगों की, पूरा पूरा खाना अपच खाना है, मुंह में टुकड़े भी आ जाते हैं पलट के, एसिड भी आता है, इसे बोलते हैं रिफ्लक्स। रिफ्लक्स माना वापस लौटता है, क्यों लौटता है कि थैला पूरा भर लिया। तो पहले जमाने में जब मेहमान खाना खाता था और डकार आ जाती थी तो कहते भाई भोजन, भाई मेहमान बड़ा खुश हो गया, भरपेट खाया, भरपेट कैसा खाया कि जो पेट की हवा थी वो भी नहीं छोड़ी पेट की हवा भी निकाल दी, इतना भरा, इतना भरा कि पेट के ऊपर की जो जगह छोड़ी नेचर ने कि भाई मिक्स करने में खाना मुंह में नहीं आ जाए, मिक्स करने के लिए जगह छोड़ दो, वो जगह भी खाली छोड़ दी। जैसे किसी को फ्री का अगर सब्जी मिल जाए या फल मिले तो थैला इतना भर लेंगे, चाहे थैला फट जाए, चाहे बाहर बिखर जाए, लेकिन फ्री का माल है, जितना चाहो भर लो इसे, है ना, हबच होती है ना, लालच हबच होती है, बाबा हबच कहता है इसको, तो वो इतना भर लेते हैं कि वो थैला ऊपर फटने को तैयार, पेट फूल के तैयार, फिर कहेंगे अभी हमारे सेवा मस्की नहीं, अभी पेट में फार आ गया, अब तो बिल्कुल हिल्ला डुल्ला भी मस्की नहीं है कि भाई लेट जाओ, सेवा को मना कर देंगे, है नहीं, और फिर लेटे रहेंगे चूरन चटने के चक्कर में, इंतजार में। तो वो इतना भोजन नहीं करो कि वो, तो पुराने जमाने में जब कोई मेहमान खाना खाता था, डकार मारता था, तो बड़े खुश होते थे, क्यों, उस समय सेवा की भावना थी, भाई मेहमान ने इतना खाया, इतना खाया, इसका मतलब ऊपर तक की हवा भी निकाल दी, जगह नहीं मिली, इसका खाना हमारा स्वादिष्ट बना। लेकिन आजकल कोई अगर डकार मारे कह दे इतना भुक्कड़ आया है कि पता नहीं कै दिन से भूखा है, खाना नहीं मिलता घर में, क्या इतना खाना ठोक कर खाया है कि पूरा बाहर निकाल दिया है। तो अब जमाना बदल गया है, डकार मारना माना बेसबरा भूखा कैसा है, तो विदेशों में तो बहुत बुरा मानते हैं, और आजकल के सब समाज में भी बहुत बुरा मानते हैं खाना खाके डकार मारना, तो है वास्तव में डॉक्टरी साहब से भी गलत है कि भाई तूने थैले को इतना भर लिया ऊपर की हवा भी निकाल दी तुम्हें उसके बेचारे के। तो इसलिए भोजन इतना खाएं, भले 4 बार में खाएं, 3 बार की जगह 5 बार में खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं जो आराम से पाचन क्रिया भी डिस्टर्ब नहीं हो, और सामने खिलाने वाले को भी ना लगे कि भूखे नंगे आए हैं हम गरीब घर के, आज तक जैसे देखा ही नहीं हो खाना, बहुत से खाने पे टूट के ऐसे गिरते जैसे कोई मिलिट्री जैसे दूसरे दुश्मन को कैच करती है, ऐसा ना करें। तो थोड़ा थोड़ा खाएं, कई बार में खाएं, 1 हिस्सा सॉलिड, 2 हिस्सा पानी और बाकी हवा छोड़ें पेट में, तो ठीक से भोजन पचेगा और पचने के बाद में पाचक रस बनेंगे। और क्या गड़बड़ होती है जिसकी वजह से गैस एसिडिटी बनती है, कि भोजन 2 तरह का होता है, एक तो मिर्च मसाले, चाय मिर्च मसाले, खट्टी चीजें, तली चीजें, ये ज्यादा मुश्किल होती है पचानी, एसिड ज्यादा बनाती है। दूसरा क्या होता है, खाना जैसे बताया ज्यादा खा लेना, ठीक से मच्छर मिक्सिंग नहीं होगी, पचेगा में नहीं तो गैस बन जाएगी। और तीसरा क्या है, खाना खाने के बाद में भारी काम नहीं करना चाहिए। खाना खा के अगर आप दौड़ने का काम करेंगे या भारी भरकम काम करेंगे, मजदूरों की तो बात अलग है, क्योंकि उनको हैबिट पड़ जाती है बचपन से ही, रोटी खाएंगे और फिर रोटी भी उनकी सिंपल होती है। मजदूरों की रोटी देखो, जरा सी अचार होगा, प्याज होगी, चार पांच रोटियां होंगी जो भी जितने खाते होंगे, तो उनकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है, हैबिट पड़ जाती है। लेकिन जो शारीरिक वर्कर नहीं है, हैवी वर्कर नहीं है, उनका सिस्टम डिफरेंट होता है, हम जैसे आप लोगों का। तो उसमें क्या है कि भोजन के बाद में टहल तो सकते हैं, हल्की स्पीड से टहले, लेकिन दौड़े नहीं, फास्ट गति से, भारी भरकम काम ना करें, आगे झुकने वाला काम ना करें, है ना। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे फिर तो सब कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्यों होता क्या है कि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन को पचाने के लिए जो खून का दौरा बढ़ जाता है हाथों को, तो सारे शरीर से, दिमाग से, हाथों से, पैरों से खून ट्रांसफर होके पेट में आ जाता है। जैसे कभी अगर मधुबन में काम ज्यादा बढ़ जाए तो दूसरे डिपार्टमेंट के सेवाधारी भी आके क्या करते हैं, तो उस काम को लग जाते हैं, तो दूसरी जगह से सर्कुलेशन कम होता है, आंतों की तरफ सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा खाना खाने के बाद नींद आती है, क्यों आती है, दिमाग से खून, सारे शरीर से खून पेट में पहुंच जाता है, नसों के अंदर, इस वजह से सुस्ती आती है खाना खाने के बाद। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, सुस्ती भी कम आएगी और दूसरा खाना भी पचेगा। अगर दौड़ना लगा चालू कर दिया, भारी भरकम काम किया, तो सारा खून तो टांगों की तरफ जाएगा, आंतों खून कम मिलेगा, आंतों खून कम मिलने से पाचन का जो पचा हुआ रस है वो शरीर में नहीं पहुंचेगा पूरी मात्रा में। तो इसलिए खाने के बाद शारीरिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। और अगर शारीरिक मेहनत का काम है, कोई सेवा है, तो खाना बहुत हल्का खाएं, ताकि आपकी सेवा में रुकावट नहीं हो। सेवा फर्स्ट है, हल्की चीजें खाएं, हल्का भोजन करें, फिर जब आपकी सेवा पूरी हो जाए, जब आराम का समय हो, तो फिर खाना की मात्रा पूरी कर लें। तो सुबह का खाना थोड़ा हल्का रहे, दोपहर का खाना भारी रहे, रात का खाना फिर हल्का कर दें, क्योंकि सोते फिर अगला कारण क्या होता है खाना ना पचने का, एक तो मतलब एक्सरसाइज की ज्यादा कर ली तो खाना नहीं पचेगा, दूसरा क्या है, रात को जब हम जब सोते हैं तो सोते समय सारे पाचक रस कम हो जाते हैं, मुंह की राल कम हो जाएगी, सब कुछ कम हो जाएगा, आंतों की गति मंदी हो जाएगी। तो अगर आपने खाना देर से खाया और खा कर सो गए तो क्या होगा, उससे वो खाने को पाचक रस पूरे नहीं मिलेंगे, और पाचक रस पूरे नहीं मिलने की वजह से वो खाना पचेगा नहीं, और नहीं पचने की वजह से गैस एसिडिटी बन जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए रात का खाना सोने से 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग के 8 से 9 के बीच खाना खाते हैं, सारे संसार में सिस्टम ही आजकल बना हुआ है। पहले जैनी सिस्टम सबसे बढ़िया था, 6 बजे खाना खाया, सुबह खाया, 6 बजे खाया, दोपहर को हल्का ले लिया, 6 के बाद में 10 बजे सो गए, 4 बजे तक खाना, 4 घंटे। क्योंकि भोजन को पचने में वैसे तो 6-7 घंटे लगते हैं, लेकिन 4 घंटे में पेट खाली हो जाता है, 3 घंटे में पेट खाली होता है, 3 से 4 घंटे में। तो उस खाने पाचक रस कम बनेंगे तो फिर खाना हजम नहीं होगा। इसलिए सोने से 4 घंटे पहले खा लेंगे, 3-4 घंटे पहले, तो भोजन पूरा ठीक से पच जाएगा सोते समय। फिर तो जो खाना पचता नहीं है उसमें क्या होता, सड़न पैदा हो जाती है ना, तो सड़न की वजह से फिर गैस, और गैस की वजह से फिर एसिडिटी पैदा होती है। तो अगर दिनचर्या ऐसी है कि भोजन 8 से 9 के बीच ही खाना है, तो उसका तरीका फिर यह है कि दोपहर का खाना भारी कर दें, रात का खाना हल्का कर दें, या रात के टाइम हल्का दूध ऐसा पी लें, या कुछ छोटा सा हल्का सा अल्पाहार कर लें, तो उससे फायदा ये होगा कि सुबह के टाइम अमृत वेला भी अच्छा होगा। क्योंकि रात को आपने कभी खाकर देखना कर प्रयोग करके, रात को हैवी खाना खाना तो एकदम पेट भी भारी, सुबह के टाइम सुस्ती रहेगी, और रात का खाना हल्का कर देना तो उससे ऑटोमेटिकली खाना पच जाएगा, शरीर भी हल्का रहेगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ना खाएं, बहुत से लोग कहते हैं रात को खाते ही नहीं, तो रात वो भी गड़बड़ है। क्यों कि अगर रात को खाना नहीं खाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत नहीं खाएंगे, तो पाचक रस तो निकलते रहते ना एसिड वगैरह, तो वो फिर आंतों को नुकसान करता है, आंतों को झिल्ली काटता है सर। इसलिए रात को भले थोड़ा खाएं, लेकिन खाएं जरूर, भले फ्रूट्स ले लें। हालांकि फ्रूट्स के लिए प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं सुबह के टाइम फ्रूट्स खाने चाहिए 12 बजे से पहले पहले, लेकिन अगर अपने बॉडी को आप एडजस्ट कर लेंगे तो रात के टाइम भी फ्रूट ले सकते हैं, है ना। तो या तो दूध पिए और थोड़ा सा एक आध रोटी खा लें, कुछ हल्का खाना बना लें, हल्की खिचड़ी ले लें, कुछ ऐसा सिंपल ले लें। कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने चाहिए, आलू चावल मीठा ये चीजें अन्न रात को कम खाने चाहिए। क्यों? कि इससे थोड़ा वजन बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स दिन में खाने चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी पैदा होती है, ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज की जरूरत दिन में ज्यादा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट दिन में ज्यादा खाने चाहिए शाम को 6 बजे के बाद। फिर प्रोटीन्स थोड़ी सी ले लें, कोई भी अंकुरित चीजें ले लें, कुछ ऐसा ले लें या दूध ले लें ऐसा कुछ करके, तो रात को खाने से पहले खाएं या फिर खाना बहुत हल्का कर लें। तो अगर ये ध्यान रखेंगे तो खाना ठीक से पचेगा। दूसरा क्या है, कई बार हम क्या है खाना सॉलिड सूखा खाना ज्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तरल पदार्थ कम लेंगे, खाने में तरल पदार्थ कम है, तो क्या होता है जो खाना खाते हैं पिस भी जाएगा मुंह में, लेकिन जब पेट में जाएगा मिक्सिंग नहीं होगी। अब आटे की रोटी बनाएं और पानी पूरा न डालें तो रोटी बन पाएगी, उसकी मिक्सिंग नहीं होगी ठीक से, तो पेट में मिक्सिंग नहीं होने की वजह से पाचक रस ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं और गैस एसिडिटी बन जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जरूरी हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो एसिडिटी नहीं बनेगी, गैस कम बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा हाँ कुछ कह रहे हैं, बीपी 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 एक अलग विषय है। अगर आज तो फिर बीपी की बात चल पड़ी तो फिर पूरा समय बीपी में निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बीपी सबको नहीं है लेकिन बदहजमी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमन है, तो अगर ध्यान रखेंगे ये। अच्छा, फिर आता है फूड एलर्जी। कई बार क्या होता है खाना भी सब कुछ अच्छा है, संतुलित है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भोजन संतुलित माफिक नहीं आता है। किसी को दूध से दस्त लग जाते हैं, गैस बन जाती है, किसी को दालें खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, किसी को कोई पर्टिकुलर भोजन खाया सूजन आ जाता है, शरीर में खुजली मच जाती है। तो क्या होता है कि भोजन जो तत्व है कई बार शरीर को माफिक नहीं आते किसी को, तो इसमें कहते हैं भाई हमारे भोजन में दोष है, फलानी चीज माफिक नहीं आती। तो वास्तव में दोष भोजन में नहीं है, दोष हमारे शरीर में है। अगर एक दाल 100 लोगों को फायदा कर रही है और एक को नुकसान कर रही है तो क्या कहेंगे, नुकसानदायक है वो, उसका दोष नहीं है, दोष हमारे शरीर का है, हमारा शरीर उस पर रिएक्ट कर रहा है। एक व्यक्ति है 100 लोग तो बहुत अच्छे बोलते हैं, और जो 101वां जब मिलता है तो झगड़ा चालू हो जाता है। अगर वो खराब होगा तो 100 से लड़ेगा ना जाके। अगर किसी व्यक्ति का संस्कार खराब है तो क्या खबर आएगी, भाई तो सबसे झगड़ा करता है, लेकिन वो 100 से तो बढ़िया है और 1 से टक्कर मार रहे हैं, इसका मतलब क्या हिसाब किताब है। जो खराब होता सबसे ही खराब होता ना, तो वो सब्जी वो दूध वो फल वो दाल वो अन्न सबको फायदा पहुंचा रहा है, आपको नुकसान कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, आपका हिसाब किताब है। वो आपके शरीर का दोष है ना कि वस्तु का। लेकिन क्या होता है हम हमेशा दोषारोपण दूसरे पर करते हैं, अपने पर नहीं करते। तो जब भोजन सामने आए तो भोजन में दोष ना निकालें। हमारे प्रकृति में दोष है, शरीर में दोष है, जिसकी वजह से गड़बड़ है। तो भोजन को तो कहें भाई वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप तो बहुत अच्छे हो, है नहीं, लेकिन मेरे शरीर को भी सुख दो। तो मित्र दुश्मन को मित्र बनाना पड़ेगा ना, तो दुश्मन को मित्र कैसे बनाएंगे, ये एक प्रयोग है आपको बताएंगे आज, इस प्रयोग को करना अगले एक हफ्ते। आप यहाँ पर कब तक है, अभी हफ्ते 10 दिन है यहाँ पे, तो 10 दिन में ये प्रयोग करना और बताना अगले हफ्ते कि ये भोजन जो आपको नुकसान कर रहा है जिसे हम फूड एलर्जी कहते हैं, तो वास्तव में इसको एलर्जी को एलर्जी माना, वो शरीर में माफिक नहीं आता, हमें प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो वास्तव में भोजन नुकसान नहीं पहुंचा रहा, हमारा शरीर उसको स्वीकार नहीं कर रहा। अब फूड एलर्जी क्या है, तो फूड एलर्जी से कुछ को एसिडिटी बनती, किसी को गैस बनती, किसी को दस्त लग जाते, किसी को अफारा आ जाता, किसी को खुजली मच जाती, है ना, किसी को शरीर में जगह जगह दर्द चालू हो जाता, किसी को बाय हो जाती, तो वो हमारा शरीर उसको तो एलर्जी फूड एलर्जी कहते हैं। तो फूड एलर्जी माना क्या होता है कि जब भोजन कोई हमारे सामने आता है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हमें लगे ये हमारा दोस्त है, तो हम उसे वेलकम करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करेंगे तो घर में बुलाएंगे, आओ भी बैठो, तो वो हमें खुशी देगा और हम खुश होंगे तो वो भी खुश होगा, तो वो सुख देकर जाएगा। और कोई व्यक्ति है सामने आ रहा है और हमें लग रहा है पता नहीं ये फायदा करेगा कि नुकसान, दुश्मन है कि दोस्त है, तो हम शक की नजर से देखेंगे, शक की नजर से देखेंगे तो उसे पहले तो आने नहीं देंगे गेट के अंदर। अगर अलाउ भी कर दिया तो सोचते रहेंगे पता नहीं नुकसान करेगा पता नहीं फायदा करेगा, पता नहीं अच्छा है कि पता नहीं बुरा है, जल्दी बाहर करो इसे, है ना, यही होगा ना। और अगर लगे कि भाई तो दुश्मन है तो क्या होगा, पहले दूर से देखते ही भ्रकुटी टेढ़ी हो जाएगी, संकल्प भी टेढ़े हो जाएंगे, तो निगेटिव केमिकल बनेंगे, निगेटिव इफेक्ट हमारे शरीर पर डालेंगे, है ना। और चौथे प्रकार का लोग क्या होते, धोता तो मित्र है लेकिन हमें गलत फहमी आती है, अरे चेहरे से लग रहा है कोई टेढ़ा टेढ़ा आदमी है, गड़बड़ाई वो, तो चाहे वो अमृत लेके आए हमारे लिए, हमें लगता है दुश्मन है, दुश्मन हो भी सकता है, तो अमृत लेके आएगा तो वो भी हमें जहर दिखाई देगा, है ना, ये भी जहर लेके आया नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसका जहर भी अमृत भी जहर के बराबर हो जाएगा। तो जैसे कहा कि तत्व में दोष नहीं है तो सौ को फायदा कर रहा है, फिर हमें नुकसान क्यों कर रहा है, इसका मतलब नुकसान हमारी प्रकृति में है, शरीर में है। और प्रकृति किसने बनाई, रचता कौन इसका, आत्मा, संकल्प की रचना है ना। संसार में हर चीज संकल्प की रचना है, आप घर बनाते हो तो पहले मन में संकल्प करते हो कि घर बनाना चाहिए, फिर नक्शा अपनी इच्छा से रचते हो ऐसे ऐसे होना चाहिए, फिर मिस्त्री से कहते हो देखो भाई ऐसे ऐसे बनाना, फिर संकल्प के आधार पर सामान बाजार से लाते हो, संकल्प के आधार पर उसको निर्माण करते हो, तो सारा मकान संकल्प की रचना हुआ नहीं हुआ। प्रकृति के तत्व तो आपके संकल्प के अनुसार आके जुड़ जाते हैं कि भाई हमारा मकान बहुत मजबूत बनना चाहिए, इसमें एक चार का मसाला डालना है, सीमेंट चार से डलवाएंगे हम, पांच से मजबूत बने। आपका नहीं भी, हमें तो कमजोर मकान बनाना है टेम्पररी, एक दस का मसाला डाल देना, ढह जाएगा थोड़े दिन बाद। तो संकल्प से रचना करे, ऐसे शरीर भी संकल्प की रचना है, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार कुछ जन्म के संस्कार। तो जब हमने समझ लिया संकल्प की रचना है, तत्व में दोष नहीं है, सीमेंट गारा से बढ़िया है, हमारी सोच में दोष है, तो अब संकल्प अपने सुधार लो। भोजन से कहो कि भाई एक तो तुम भोजन हो, तुम तो बहुत कल्याणकारी हो, सारे संसार को जीवित करे हुए हो, उसमें भी ब्रह्मा भोजन, भाई तुम तो हमारे परम मित्र हो, तो बाबा ने कहा भोजन भी औषधि बन जाएगा। तो आज ये आपको एक्सरसाइज बताएंगे, 10 दिन आप करना और बताना, मुझे पूर्ण विश्वास है पर परमात्मा के महावाक्य तो है ही मुरली में, प्रैक्टिकली कुछ ऐसे अनुभव आए, मुझे फूड एलर्जी थी बहुत ज्यादा, बहुत लोगों को होती है, लेकिन आप प्रैक्टिकल प्रयोग करना बाबा की मुरली के आधार पे, कि उस भोजन को आज से ब्रह्मा भोजन को क्या मानो, औषधि मानो, अमृत मानो, और अमृत समझ के खाना। तो भोजन से पहले संकल्प करना, क्योंकि देखो जो ब्रह्मा भोजन बाबा कहते हैं देवताओं को भी नसीब नहीं, तीनों लोकों में और पांचों युगों में, चार युग और पांचवा संगम युग और सारे संसार में, बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये महाभाग किसके हैं, परमात्मा के, लेकिन हमने इनको पूरा स्वीकारा नहीं तो इसलिए पूरा लाभ भी नहीं ले पाए। जैसे हमने कहा ना, हमने पहले दुश्मन समझ लिया, लेके तो आया अमृत, और हमने समझ लिया तो जहर लेके आ रहा है, तो जहर का ही तो असर आएगा। तो बाबा के पास चलते हैं, फिर लौट के आएंगे, फिर अंत में उसको थोड़ा डिस्कस करके फिर बताएंगे क्या करने का है।
I'm not afraid.
भोजन देवताओं, ब्रह्मा भोजन मशहूर है, देवताओं को भी नसीब में नहीं है, तो ब्रह्मा भोजन की इतना गायन क्यों है? तो आपने देखा देवताएं कभी बीमार तो होते नहीं, वहां भी गैस एसिडिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, क्यों? एक तो भोजन सतोगुणी है, दूसरा पवित्र कमाई का है, पवित्र भोजन है, सतोगुणी तत्वों का बना हुआ है, पवित्र स्थान है देवलोक, पवित्र आत्माओं द्वारा बनाया गया है उनके वाइब्रेशंस, फिर देवताएं हबश में नहीं खाते, लोभ लालच आसक्ति से नहीं खाते, थोड़ा खाएंगे, जितना जरूरी है उतना खाएंगे शरीर को, तो देवताएं मोटे ताजे दिखाएं क्या? संतुलित, न मोटे न पतले, ये नहीं कि भाई आज रसगुल्ले बन गए तो 6 खा गए, खाना बढ़िया बना तो 2 की जगह 4 खा गए, है नहीं, खीर 1 की जगह 4 कटोरी पी गए, है नहीं, वो द्वापर के देवता है, सत्युग त्रेता के देवता नहीं है ना जो मोटे पेट वाले देवता है तो द्वापर के है सभी, सत्युग त्रेता के देवता नहीं, सत्युग त्रेता के देवता है आप सब लोग हैं, वो द्वापर कलयुग के देवता है, तो उनके संकल्प पर रचना भी ऐसी है ना, हवच है ना साथ में, तो हम तो सत्युग त्रेता के देवता है ना, इसलिए तो मोटे पेट वाले द्वापर के बाद में आए, द्वापर से चालू हो जाएंगे, तो भोजन संतुलित खाते, फिर एक्सरसाइज, घूमना फिरना, वहां एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे लेकिन डांस आदि खूब करते है ना, तो ये सब बातों के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक रहता। तो ब्रह्मा भोजन भी देखो पवित्र कमाई का, यज्ञ में जो पैसा आ गया वो शुद्ध हो जाता, फिर शुद्ध तत्व है, कोई तामसिक पदार्थ नहीं है, मिर्ची अचार भी रखने इसलिए पड़ते कि बहुत से लोग बाबा को घर में आते तो बाबा ज्ञान देता फिर छोड़ देता, क्यों? बच्चे मेहमान भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई 4 दिन के लिए यहां पर आया और खाना उसकी मनपसंद नहीं मिला तो सारे दिन उसके संकल्प खाने में रहेंगे, योग ज्ञान क्या सीखेगा, इसलिए बाबा कहता बच्चे आए भले पधारे, ज्ञान सबको है क्या खाना क्या नहीं खाना है, लेकिन ये तो नहीं कहता भाई तुम मिर्च छौका भर कलछा भरकर डाल दो अंदर, भाई तुम्हारी मर्जी है, बच्चे नहीं कर सकते तो चलो मिर्च खाते रहो अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन ज्ञान योग तो सही ग्रहण करके जाओ, आदत भी सुधार लेना वहां जाके। तो बाबा यहाँ पे आदत सुधारने के लिए नहीं शिक्षा देता, फिर आदत बच्चों को छोड़ देता, बच्चे जैसा तुम ठीक समझो, भगवान के घर में तो कमी नहीं है, 2 की जगह तुम 6 खाओ, भगवान मना थोड़ी करता, मेहमान हो बाबा के, बच्चे भी हो तो मेहमान भी हो, तो उस तरीके से बाबा हम पे छोड़ देते। तो वो चीजें हैं, जरूरी है, कई बार खाने में टेस्ट नहीं होता है, आजकल कई बार तत्व ऐसे हो गए, तो हल्का सा अचार लेने में कोई हर्ज नहीं है, नींबू का अचार है और अदरक के अचार है और भी जैसे थोड़ा सा ले सकते हैं, हमारी टेस्ट बर्ड और हाजमे को थोड़ी मात्रा में लेंगे तो हाजमा करेगा, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा, एसिड से अगर खाल पर डाल दो जल जाएगा, वही एसिड पेट के अंदर थोड़ी मात्रा में होता है तो पाचक का काम करता है, ज्यादा मात्रा में किसी को एसिड पिला दो तो जख्म बन जाएंगे, ऐसी हल्की मात्रा में मिर्च नुकसानदायक नहीं है, हरी मिर्च ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको एसिडिटी रोग नहीं है, एसिडिटी अल्सर नहीं है तो हल्की मिर्चों का कम मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही तेल चिकनाई शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि इससे हार्मोन्स बनते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो पित्त की थैली पर जोर डालेगा, आते खराब होंगे, कमजोर होंगे, तो जितना आवश्यक है उतना कम मात्रा में डालें, क्योंकि अगर चिकनाई नहीं लेंगे भोजन में तो हमारी जो गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है ना, इसमें पित्त भरा रहता है, पित्त क्या करता है चर्बी को पचाता है, तो अगर चिकनाई नहीं लेंगे थोड़ी बहुत भी खाने में तो पित्त की थैली में पित्त इकट्ठा रहेगा, पिचकेगी नहीं, पाचक रस मिलेंगे नहीं, चिकनाई हजम नहीं होगी और बीमारी हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए थोड़ी मात्रा में चिकनाई भी जरूरी है, लेकिन चिकनाई कैसी हो उसको उबालें नहीं, जो खोल जाती है चिकनाई धुआं बन जाता है, जो चिकनाई का जो पराठे बनाएंगे वो जो चिकनाई है वो दिल की नसों पे खून की नसों में जम जाती, जिससे आगे चल के ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालिस आदि रोग होते, क्योंकि नसें ब्लॉक होती उस चर्बी से, कौन सी चर्बी, जो खूब खोल जाती धुआं बन जाती, वो चर्बी अगर हम खाएंगे तो नुकसान करेगी। कच्ची चिकनाई खाएंगे, फुल्का चपोड़ लिया हल्का या सब्जी में जरा सा डाल लिया, उससे कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा मात्रा में ना लें और खोला कर ना लें उसको, मक्खन नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जब घी बनाएंगे उसका खूब खोलाएंगे तो वो नुकसान करता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी चिकनाई खाएं ये भी ध्यान रखें थोड़ा सा। अच्छा, तो वो भोजन हम जो है शुद्ध भोजन होता, शुद्ध तत्वों का होता, योगी आत्माओं का बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ, बाबा की याद में बना हुआ भोजन, फिर बाबा की याद में खाया जाए तो वो औषधि बन जाता है। तो एक संकल्प आपको दे रहे हैं आज क्लास का समापन करते हुए आज का, कि जब भी भोजन खाएं तो भोजन को पहले संकल्प दें कि हे ब्रह्मा भोजन, तुम तीनों लोकों में, सारे युगों में परम श्रेष्ठ, परम पावन प्रकृति के तत्व हो। भगवान के घर का ये ब्रह्मा भोजन मेरे लिए परम औषधि है। भोजन का एक एक कण भोजन नहीं है, औषधि है, अमृत है, आत्मा और शरीर को पावन बनाने वाला। क्यों कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो मन को पावन बनाने वाला और तन को स्वस्थ बनाने वाला अमृत के समान परम औषधि है। तो इस संकल्प के साथ मैं ये ब्रह्मा भोजन बाबा के शरीर को, रथ किसका है, बाबा का, बाबा के शरीर को औषधि समझ के, अमृत समझ के स्वीकार कर रहा हूं। ये संकल्प हमेशा देना, बार बार भोजन करने से पहले, समझ गए ना। ये ब्रह्मा भोजन तीनों लोकों में, पूरे कल्प में परम पावन और परम श्रेष्ठ अमृत तुल्य है, मेरे लिए परम औषधि है। तो ये समझ के खाए, इसका एक एक कण मेरे शरीर को, हर कोशिका को स्वस्थ बना रहा है और मन के हर संकल्प को शुद्ध बना रहा है। तो ये तीन बार मन में रिपीट करें, उसके बाद ये भोजन करना, थोड़ी मात्रा में करना, जितना हजम हो जाए। रात का खाना हल्का, धीरे धीरे खाना, चबा के बाबा की याद में, याद की कमाई भी रहेगी, पाचन भी अच्छा होगा। और फिर अगले हफ्ते आप हमें बताना अपना अनुभव कि वो भोजन जो एलर्जी कर रहा था वो भोजन अब आपका दोस्त बन जाएगा, वो दवा का काम करेगा, दवाओं की मात्रा भी घट जाएगी। ऐसा प्रयोग आप सब करना, हमें तो पूर्ण निश्चय है, लेकिन अगर आप डर डर कर खाएंगे इसका मतलब निश्चय नहीं है। डर कब होता, जब निश्चय नहीं होता, इसका मतलब। और संशय आ गया तो माया बीच में आ गई। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विद्यंती, भगवान के महावाक्य है, भगवान के महावाक्य ब्रह्मा भोजन के बारे में भी है। तो जब भगवान ने कहा कि यह महा औषधि है, तन मन को पावन बनाने वाला है ब्रह्मा भोजन, तो फिर महावाक्य तो सिद्ध है ना भगवान के। तो इस पूर्ण निश्चय के साथ खाना, परहेज के साथ, नियम के साथ, हवज के साथ नहीं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगली क्लास में आप सबके रिजल्ट्स बिल्कुल 100% ओके आएंगे, आपकी औषधि की मात्रा भी घट जाएगी और शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा। जो भोजन आपको एलर्जी करता था वो भोजन आपका मित्र बन जाएगा, शरीर का मित्र बन जाएगा और आपको सुख देगा। ठीक है, तो इस पूर्ण निश्चय के साथ हम ये प्रयोग करेंगे और अपने अनुभव अगले हफ्ते शेयर करेंगे। जो लोग सुन रहे हैं इस हॉल से बाहर वो भी, और जो यहाँ बैठे हैं वो भी। ठीक है, तो कितना बड़ा काम बनेगा, परम औषधि अमृत तुल्य आत्मा के लिए और तन के लिए। तो इसी चर्चा के साथ ओम शांति।